महावीर अब जागो, आलस्य की निद्रा को त्यागो, तमस की रात्रि से अब जागो। रूहे कलप रही है, दुख दर्द से तड़प रही है, दर दर भटक भटक कर ना उम्मीद हो गई है, दिल शिकस्त होकर हिम्मत हीन हो गई है। हे मंदिर के चैतन्य बुत कहलाने वाले, क्या बुत की तरह दिल रखते हो, दर्द भरी आहें नहीं सुनते हो, दुख भरी चीखें नहीं सुनते हो। हे महावीर अब जागो, आलस्य की निद्रा को त्यागो, तमस की रात्रि से अब जागो।
ओम शांति। चीन की सड़क पर अचानक एक दिन एक स्त्री प्रकट होती है। वो कहाँ से आई, वो क्यों आई, किसी को पता नहीं, परंतु अत्यंत आकर्षण है, रूपवान है और कई सारे युवा वहाँ जाते हैं और सब कहते हैं कि हमें आपसे विवाह करना है। वो एक स्त्री और कम से कम 300 युवक आ जाते हैं। वो स्त्री कहती है, मैं एक हूँ, तुम 300 हो, तुम में से जो बुद्ध के कमल सूत्र, लोटस सूत्र पूर्ण कंठस्थ करके आएगा, मैं केवल उसी से शादी करूँगी। धम्मपद में भी बुद्ध की सारी शिक्षाओं का सार लोटस सूत्र में है। वो सारे कुमार युवक अपने अपने घर जाते हैं और स्त्री ने कहा है 24 घंटे का समय है और वो दिन रात लग जाते हैं अध्ययन में और अगले दिन 10 ऐसे युवक आते हैं और उन्हें लोटस सूत्र कंठस्थ है। प्रश्न अभी भी वही है। वो स्त्री कहती है, तुम हो 10, मैं हूँ एक। जो लोटस सूत्र तुम लोग कंठस्थ करके आए हो, यदि कोई उसका अर्थ मुझे समझाए एक एक का, तो ऐसे उस भाग्यवान से मैं शादी करूँगी। वो 10 युवक घर जाते हैं और उन सूत्रों का अध्ययन करते, समय कम है। प्रेम समय से बड़ा है। अगले दिन 3 युवक आते हैं जिन्हें वो सूत्र पूरे समझ में आ गए हैं और वो समझाते हैं, पर वो स्त्री कहती है, प्रश्न अभी भी वही है, तुम हो 3, मैं हूँ 1। मैं एक से ही विवाह करूँगी और कोई ऐसा हो कि जिसने उन सूत्रों को अपने जीवन में उतारा है, वो सूत्र उनके जीवन में बह रहे हैं, उन सूत्रों का रस और सुगंध उनके जीवन से झलकता हो। वो 3 जाते और अगले दिन केवल 1 आता है और वास्तव में उसके व्यवहार से और जीवन से सूत्र छलकते हैं। वो स्त्री कहती है, मैं इसी से शादी करूंगी। और वो स्त्री उस युवक को शहर के बाहर ले जाती है। उस युवक ने यह दृश्य कभी देखा नहीं था। शहर के बाहर उस स्त्री का घर है और घर के बाहर उसके माता पिता है स्त्री के। वो स्त्री अपने माता पिता से उस युवक को मिलाती है, कहती है ये मेरे माँ बाप है, और वो खुद घर के अंदर चली जाती है। वो युवक उस स्त्री के माता पिता से मिलता है और बाद में माँ बाप कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है घर के अंदर। वो घर में प्रवेश करता है पर घर में कोई भी नहीं है। वो सब जगह देखता है, वो स्त्री कहीं पर भी नहीं है, पर घर के बाहर एक दरवाज़ा खुल रहा है अंदर भीतर। वो उस दरवाज़े से बाहर जाता है, वहाँ एक बगीचा है और उस बगीचे में उस स्त्री के पैरों के निशान है उसके सैंडल के। वो उस सैंडल के पैर उस पैरों के निशान का पीछा करते करते आगे जाता है, पर वहाँ कोई भी नहीं है। वो आगे बढ़ते जाता है और आगे जाकर एक नदी आती है और नदी के तट पर देखता है वो सैंडल रखी हुई है। वो युवक यहाँ वहाँ देखता है, वो स्त्री कहीं पर भी नहीं है। वो युवक पीछे मुड़कर देखता है, ना तो बगीचा है, ना तो पैरों के निशान है, ना वो घर है और ना ही वो माता पिता। वो आगे मुड़कर देखता है, नदी भी नहीं है और वो सैंडल भी नहीं है, और वो जोर से हंसता है। उसका विवाह संपन्न हुआ, कहानी पूरी हुई, कहानी समाप्त। किससे हुआ उसका विवाह? और वो स्त्री कौन थी? कहानी रहस्यमयी। वो जोर से हंसता है और बौद्ध फिलॉसफी में इसको कहा जाता है लाफ्टर बेली। उसका विवाह हो गया, किससे हुआ? शून्य से हुआ, शून्यता से हुआ। तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था सूत्र को कंठ करना, दूसरी अवस्था उन्हें समझना, तीसरी अवस्था उनको जीवन में धारण करना। वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री गुरु थी, जो इन तीन अवस्थाओं को पार करता है। वो गुरु उसे अपने साथ ले जाती है और उसे वहां जाके छोड़ती है जहां वो पीछे मुड़कर देखता है, ना तो रास्ता है, ना तो पदचाप, ना तो पदचिन्ह है, ना वो घर है, ना कोई व्यक्ति है। वो इस संसार के मोह माया से पार निकल गया है। पीछे मुड़कर देखता है, कुछ भी नहीं है, यहां तक कि उस स्त्री के सैंडल भी नहीं है, ना ही वो नदी रही है। अब वहां केवल शून्य बचा है, वहां सब कुछ छूट गया है। कंठ करना, समझना, धारण करना और उसके बाद इतने आगे निकल जाना कि वहाँ ये सारे बंधन भी छूट गए। ही इज मैरिड टू नथिंगनेस। जेन स्टोरी कहती है उसका विवाह हो गया है शून्य से, इसलिए वो जोर से हंसता है। यूनिवर्सल लाफ्टर, द लाफ्टर फ्रॉम द बेली। उसे एक हंसी आती है और उसका विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह वैसे ही है जैसे गोपियों का कृष्ण से या फिर ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट का क्राइस्ट से या फिर आत्मा का परमात्मा से, जहां वो ज्ञान घंट होता है, समझता है और फिर जीवन में धारण होता है और फिर उसके भी आगे निकल जाता है और सारी हदें पार करता है, और संसार की सारी स्मृतियाँ, संसार की सारी वासनाएँ, संसार के सारे भोग उपभोग, इच्छाएँ तृष्णाएँ सब से पार निकल जाता है और वहाँ उस अहंकार शून्यता में व्यक्ति का मिलन उस परम चेतना से होता है। तो इस ब्राह्मण जीवन की भी यही अवस्थाएं हैं। फर्स्ट सूत्रों को समझ कंठ कर लेना, पढ़ना और उसे याद रखना। दूसरा उसको समझना, और तीसरा उसको जीवन में लाना, और उस समझ के साथ योग बल के साथ आगे 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 बढ़ना, और अपने भीतर की रस्सियाँ, बेड़ियाँ, ग्रंथियों को खोल देना, निर्ग्रंथ बन जाना। निर्बीज समाधि कहा है, एक है सबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि, एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि। संकल्प विकल्प कन्फ्यूजन, करूँ कि ना करूँ, इन सब से व्यक्ति पार जाकर एक ऐसे मुकाम पर पहुँचता है जहाँ उसके मन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और वही परम सौंदर्य है जीवन का, वह रिक्तता, वह एम्प्टीनेस, वह खालीपन। वो संसार वाला खालीपन नहीं है, व्यक्ति अपने मोह माया और विकारों से रिक्त हो गया है, और यही इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। और आगे और आगे, किसी सूफी फकीर से किसी ने पूछा अध्यात्म क्या है, उत्तर था और आगे और आगे और आगे और आगे। रुकना नहीं है। अगर हमने ये सोच लिया कि अब तक जो सेवाएं की और अब तक जो ज्ञान और योग को समझा और अब तक जो अनुभव किए इस जीवन में वो पर्याप्त है, तो ये मृत्यु होगी। अध्यात्म अर्थात और आगे, एक डिवाइन रेस्टलेसनेस, और आगे और आगे और आगे और आगे। अभी तो कुछ भी अनुभव नहीं किया, अभी तो कितने अनुभव बाकी है, सितारों से आगे जहां और भी है, तो बहुत कुछ समझना बाकी है। यही समझते जाना, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो केवल सुबह की साकार मुरली, केवल भाषण देने वाले वो तो योग में भी नहीं रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काम कर सकते। समझना अभी और आगे और आगे और आगे। तो आज आप सुबह से यहाँ आए और सुबह हमने कुछ चीज़ें की, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े आज के टॉपिक की ओर, पहले आप बताएंगे सुबह हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या किया? एक तो डिबेट हुई, डिबेट में कितने टॉपिक्स थे? तीन टॉपिक्स। पहला टॉपिक था ज्ञान बनाम योग, दूसरा टॉपिक था एक कुमार जीवन और एक युगल जीवन, गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कौन सा, तीसरा टॉपिक था गीत संगीत कविता एक तरफ और दूसरी तरफ मौन कौन श्रेष्ठ है। तो सुबह हमने क्या किया, एक तो डिबेट की, फिर क्या किया, एक्टिविटीज़ में क्या क्या किया, लिखा है ना, खोलो। पहली एक्टिविटी क्या थी, क्या चित्र बनाना था, किसका? पिछले 6 मास में हमारी जो कमज़ोरी है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उस कमज़ोरी का चित्र बनाया। अगला क्या किया, क्या अपने जीवन का रूटीन हमने लिखा जो उधर चल रहा है अभी, वो हमें भी तो पता चाहिए हम कर क्या रहे हैं, कर रहे हैं पर बेहोश, पता ही नहीं क्यों कर रहे और क्या कर रहे, बेहोशी में चल रहे और डाउनकास्ट आईज, अपनी आंखों को नीचे रखकर चलने की आदत डालनी है। हमारी आंखों को क्या आदत है? चंचलता की आदत है, यहाँ देखती है वहाँ देखती है, इसने क्या पहना उसने क्या पहना, ये क्या करता है वो क्या करता है। आज की मुरली के तीनों विकार इन आँखों से ही तो जन्म लेते हैं। तुम्हें किसी की ईर्ष्या नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, एक। दूसरा, किसी के अवगुण नहीं देखने माथा खराब होता है, और तीसरा, किसी की निंदा नहीं करनी है। सुबह की मुरली है ना आज, तो डाउनकास्ट आईज। अगला राइट एक पेज, रोज एक पेज लिखना है। क्या लिखेंगे एक पेज? अ आ ई उ, बारह खड़ी। क्या लिखेंगे? ए से लेकर जेड तक। इंग्लिश में लिखना है तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और स्मॉल ए से लेके तो स्मॉल जेड तक। ये लिखना क्या बन जाए? मेडिटेशन बन जाए। एक एक अक्षर पर काम करना है, ए बी सी डी, और हिंदी हो या इंग्लिश याद रखना है, शुरुआत इधर से ही करना है, इधर से अर्थात लेफ्ट से राइट की ओर जाए अक्षर। ल है तो वो ल पहले इधर आएगा, उधर वाली दंडी पहले नहीं, इधर से। इधर से चालू होगा ये सारा, जो चालू होगा ज इधर से चालू होगा, व इधर से चालू होगा, फिर वो दंडी आएगी, ल इधर से चालू होगा लिखते समय, फिर वो रेखा आएगी। तो ये हमने देखा, और क्या देखा कल सुबह? हाँ, क्या? निसंग। तो हमने छह बातें देखी। पहली बात थी निसंग हो जाना, अकेले हो जाना। दूसरा, इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी की पांच बातें। उसके बाद में एस, साइलेंस। उसके बाद में अनासक्त या अपरिग्रह। उसके बाद में गुप्त और एक निमित्त। तो ये छह बातें देखी। उसके बाद क्या देखा हमने? एक एक्टिविटी की, यहाँ पर बैठ के एक्टिविटी की ना। तो उस एक्टिविटी में क्या क्या किया हमने? क्या किया? आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, और उसके बाद अलग अलग समान। कौन से समान थे? मैं कौन हूँ? महावीर, हनुमान, शंकर, गणेश और नारायण। और उसके बाद में और भी था, मैं कुमार। कौन सा कुमार? आदर्श ब्रह्मा कुमार, वो किया। उसके बाद में एक सर्कल में एनर्जी एक्सचेंज किया। उसके बाद में बड़े सर्कल में एनर्जी एक्सचेंज की। और उसके बाद में क्या किया? डांस किया। कौन सा डांस था? डांस के बीच में क्या किया? अचानक अशरीरी। और उसके बाद में रेलगाड़ी चलाई ना। और उसके बीच में और दो काम और किए जमीन पर लेटकर। क्या थे? एक तो रिलैक्स पूरे शरीर को, और उसके साथ में एक दूसरा अभ्यास किया। कौन सा? इस जीवन में जो हमसे विकर्म हो गए, पाप हो गए, उसके लिए क्या किया? साष्टांग दंडवत। और यह अभ्यास घर पे भी करके करना है, दूसरों के सामने मत करना, बस अकेले में। इसमें बड़ा सुकून और बड़ी राहत मिलती है। मिली कि नहीं सुबह? मिली ना, थोड़ा आराम भी मिलता है, रिलैक्स। तो ये दो अभ्यास किए, और ये भी करते रहना है। जैन धर्म में प्रतिक्रमण होता है, रात में जो कुछ पाप हुआ, विकर्म हुआ, हिंसा हुई, उसके लिए वो लोग माफ़ी मांगते हैं। बड़ा सूक्ष्म है वो। पिछले वर्ष आबू में महावीर केंद्र है, वहाँ एक सागर मुनि आते हैं। वो कोविड के समय आए थे, बहुत सीरियस थे और वो बच गए, हमारे पास थे। तब से उनका परिचय और उनकी बहुत बहुत भावना है। तो वो जब भी आते हैं, मिलते हैं, और उनका ये रहता है कि उनका सारा ज्ञान वो हमको दे। तो इस बार एक उनके पहचान के थे, जिनको बहुत दिखता नहीं है, थोड़ा यहाँ तक दिखता है बस, एक ऐसे व्यक्ति से उन्होंने मिलाया हमको और कहा कि इन्होंने बहुत सारी साध्वियों को जैनिज्म सिखाया है। उनका काम ही वो है, वो इंजीनियर बैंक मैनेजर थे, पर ये सब जैन लोगों ने उनको कहा वो सब रिज़ाइन करो, आप ये सिखाओ। इतना गहरा ज्ञान है उनके पास, इतना गहरा ज्ञान है, इतना गहरा ज्ञान कि उनके हिसाब से ये जो जैन मुनि है ये कुछ भी नहीं कर रहे जो करना चाहिए ये लोगों को। तो वो हमारे पास आए थे लगभग एक मास डेली, और उन्होंने बहुत सी बातें, हर दिन एक घंटा साधना की बातें सिखाते थे, और उनको इतना सब नॉलेज था उसका, बहुत डीप नॉलेज, बहुत। वो साध्वियों के क्लासेस लेते थे, एक एक बात का। तो उनसे भी हमने बहुत सीखा। और क्या किया हमने सुबह, और कौन सा अभ्यास किया, और भी कुछ लिखा ना? क्या लिखा? मैं आत्मा हूँ। कैसे लिखा? अच्छे अक्षरों में लिखा। और बाद में कैसे लिखा? उल्टे हाथ से लिखा। तो हमें अपने दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करना है, इसलिए इस हाथ से लिखने का भी अभ्यास करना है। एक जगह एक स्कूल है, वहाँ पर सभी विद्यार्थियों को दो हाथ से लिखना सिखाया जाता है। इसका इसमें भी आया था, वीडियो भी आया था। और उतना ही नहीं, दो हाथ से दो अलग अलग भाषाएं, इससे इंग्लिश लिख रहे हैं, इससे हिंदी लिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इस लेवल की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा ब्रेन जो है, इन्फिनिट पावर है उसमें, अनंत शक्तियाँ हैं, उसको बस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हम जैसा उसको ट्रेन करेंगे वो सीखेगा। हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा बहुत सारी व्यर्थ में जा रही है। इसलिए अभी हम जिस टॉपिक पर बोलने वाले हैं वो है डिजिटल अभिशाप। वर्तमान में सबसे अधिक ऊर्जा जो नष्ट हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। एक व्यक्ति है, उसको बिल्कुल जब भी सोता है एक ही स्वप्न दिखता है। वो स्वप्न शायद आपने सुना होगा, उसका जो बिस्तर है उसको दिखता है, बिस्तर के नीचे बिल्ली, हाथी, खरगोश, कछुआ, सांप, डरावने जानवर, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, और वो आकर उसको डराते हैं, चीता, शेर, और उसे नींद नहीं आती। जब भी आँख खुलती है तो धड़ 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 धड़, और सारा दिन उसका उदासी में बीतता है। हर दिन एक ही स्वप्न उसको दिखता है। कई डॉक्टरों से मिलता है, कोई फायदा नहीं। लोगों को भी पता चल जाता है, इसको रोज एक ही स्वप्न दिखता है, उसके बिस्तर के नीचे ये सब दिखता है उसको, और वो डरता है। एक दिन अचानक वो उठता है और बहुत खुश और खुशी खुशी से अपने गली में घूमता है। लोग आश्चर्यचकित होते, क्या हुआ, क्या तुम्हारा स्वप्न खत्म हो गया? वो कहता है, हाँ ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, मेरा दूर का एक भाई है, वो आ गया, उसने ठीक कर दिया। कैसे ठीक कर दिया? वो कहता है, वो जो भाई है वो कारपेंटर है, उसने मेरे बिस्तर के चार पैर ही काट डाले। और जब से पैर कट गए खटिया के, तब से वो सपना बंद। तो चार पैर हैं, एक है इंटरनेट, दूसरा है यूट्यूब, तीसरा है सोशल मीडिया और चौथा है एआई। इन्हीं के नीचे सारे विकार हैं, इन्हीं से इन्हीं के नीचे डरावने जानवर हैं जो सोने नहीं देते, जो डिस्टर्ब करते हैं। व्यक्ति इंटरनेट पर जा तो जाता है परंतु वापस आएगा कि नहीं पता नहीं, वैसा ही शुद्ध। अगर किसी को कहो काजल की कोठरी में जाके आए, तो हो सकता है वो बहुत ध्यान रखे और ज़रा सा भी काजल उसको ना लगे। पर अगर किसी को कहो कि 3 घंटा वहीं रहना है, तो भी हो सकता है वो अलिप्त बाहर निकल जाए। पर किसी को कहो 10 दिन रहना है उसके अंदर, तो थोड़ा मुश्किल है। और किसी को 100 दिन अगर काजल की कोठरी में रहना है, तो काजल की कोठरी में दाग भाई लागे ही लागे, रे भाई लागे ही लागे। वैसे ही ये सारे जो चारों है, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया और एआई, ये वरदान है इस युग के लिए। पर वरदान के साथ साथ यदि इनका ठीक से उपयोग नहीं किया तो ये अभिशाप भी है, सबसे बड़ा कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। दुधारी तलवार है, आग की तरह है, रोटी भी पक सकती है तो घर भी जल सकता है। एक सर्जन के चाकू की तरह है, खून भी हो सकता है तो पेशेंट की जान भी बचती है उसी चाकू से। तो हमें देखना है इंटरनेट का हम कितना प्रयोग करते हैं और किस लिए करते हैं। अगर उसे ज्ञान के लिए किया जाए तो उससे अधिक अच्छा और कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया का प्रयोग यदि सेवा के लिए किया जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, पर उससे अनर्थ भी हो सकता है। एक कुमार था सेंटर पर और बहनें बातें कर रही थी कि शाम को ब्रह्मा भोजन है, तो उसको लगा ब्रह्मा भोजन सबको है। उसने सोशल मीडिया में सब जगह फैला दिया कि आज शाम को आपको ब्रह्मा भोजन के लिए आमंत्रण है, जबकि वो ब्रह्मा भोजन केवल 2 लोगों के लिए था और शाम को 60-70 लोग सेंटर पर आ गए। किस लिए? भोजन करने है। तैयारी थी 2 लोगों की, उन्होंने क्या किया पता नहीं फिर, पर यह सत्य घटना है। इतना फास्ट, फटाफट मैसेज बना दिया, फटाफट एआई जेमिनी से पिक्चर बना दिया, सबको आमंत्रण सब जगह भेज दिया और लोग पहुंच गए। बहनों ने कैसे मैनेज किया पता नहीं, अब टोली दे के भेज दिया होगा शायद। तो सोशल मीडिया इतने सारे अकाउंट्स बना के रखते हैं पर उसमें कचरा ज़्यादा है, काम की चीज़ें कम, भटकाव बहुत है। YouTube भी ऐसा ही है। उस दिन जयंती बहन जी बता रहे थे इस समय यज्ञ में 35,000 चैनल्स है, किसी समय एक था बस, उसमें सब कुछ आता था। अभी इतने सारे, ये उन्होंने लगभग बताया, उससे कई गुना अधिक होगा। इतने सारे चैनल्स। एक ही डिपार्टमेंट, वो भी आईटी डिपार्टमेंट, जैसे आईटी या सोशल मीडिया वाले, उसमें भी अगर 5 भाई है, 5ों के अलग अलग हैं। अब हम इस युग में पहुंच गए और कोविड के बाद तो ये और अधिक बढ़ गया है। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, टॉक शोज, ये बहुत है सब तरफ। यूट्यूब टीचर्स, न्यूज़ एंकर्स, इतने सारे न्यूज़ एंकर्स हैं, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, अगर एक घटना यहाँ हो रही है तो उसको 100 चैनल अगर कवर करते हैं तो 100 अलग अलग बातें आती है उसमें, एक ना मिले दूसरे से। क्या वो बोलेंगे वो उसका कुछ पता ही नहीं। कन्फ्यूजन। AI बहुत अच्छा सोर्स है सभी चीज़ों के लिए। फटाफट ये चित्र 1 मिनट में बनता है, ये जो बना है कोई भी बना सकता है, कोई भी। पहले एक चित्र बनाने के लिए कितना टाइम लगता था, अभी बस उसको प्रॉम्प्ट दे दो। और एक स्टडी कहती है जितना जोर से प्रॉम्प्ट दोगे डांट के वो ज़्यादा अच्छा बनाएगा, अगर उसको कहेंगे प्लीज़ गिव मी दिस तो अच्छा नहीं देगा, उसको डांटना बिल्कुल यू आर रॉन्ग, यू आर गिवन रॉन्ग, उसको डांट डांट के प्रॉम्प्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छे इमेजेस बनाता है। ये एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, जिसमें ऐसा कहा गया है। परंतु इससे चिंतन कम हो गया है, सिंगर्स रिप्लेस हो गए, आर्टिस्ट रिप्लेस हो गए, अभी लिखने का किसी का है ही नहीं, कुछ भी उसको दे दो, निबंध दे देता है, कविता तैयार करके दे देता है, समरी दे देता है, कुछ भी दे दो उसको। मूवी बना के दे देता है पूरी, कुछ भी एनीथिंग उसको आप दे दो। इसलिए लिखना टाइप करना ये सब बंद ही हो गया, अभी केवल कॉपी पेस्ट, उसमें डालो सब आ गया, कॉपी पेस्ट करो। परंतु वो मशीन है, वो चिंतन नहीं कर सकते जैसे ह्यूमन इमोशंस जिसमें हो। तो ये चारों ही चीज़ें साथ बातें करती है जो बोर्ड पर लिखी हुई है। सबसे पहला क्या लिखा है वहाँ पर, एडिक्शन, एक व्यसन की तरह है वो। एक बार आपको आदत पड़ गई YouTube की तो आप उससे छूट नहीं सकते, एक लिंक क्लिक होती है, दूसरी लिंक, तीसरी लिंक, चौथी लिंक, एल्गोरिदम्स। आपने एक प्रकार का वीडियो देखा तो सारे उसी प्रकार के वीडियो नीचे आते हैं अपने आप बिना आपसे पूछे। वो आपके स्वभाव को समझ लेता है कि अच्छा इसे ये पसंद है, वो वैसे ही सब देता है, एक एडिक्शन क्रिएट हो जाता है। न चाहते हुए भी व्यक्ति करते रहता है, 10 मिनट टाइम है वो 10 मिनट में 100 वीडियोस देख लेता है, और उसमें शॉर्ट्स और रील्स और शॉर्ट्स और रील्स और शॉर्ट्स और रील, छोटे छोटे उसमें जोक्स होते हैं, सब होता है, कचरा होता है दुनिया भर का, और वो आँखों को अच्छा लगता है, आँखें उसमें ट्रैप हो जाती है, बंद जाती है, इट्स अ प्रिजन। काम विकार आँखों की बीमारी है, लस्ट इज एन आई डिसीज। नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, इतना सब चल रहा है जिसमें धड़ल्ले से केवल विकार ही विकार परोसे जाते हैं, और युवा ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है उसमें, उसे भी पता नहीं चलता है हम उसमें फंस गए। इसलिए बीच बीच में डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करना है। आजकल बहुत सारी क्लासेस है, किताबें लिखी गई है डिजिटल वेलनेस पर, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, यज्ञ में भी हो रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत कम चर्चा है। और किसी भी एडिक्शन से अगर मुक्त होना है तो केवल प्रतिज्ञा करके मुक्त नहीं हुआ जा सकता, संकल्प करके मुक्त नहीं हुआ जा सकता, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि यह सबकॉन्शियस रिवायरिंग है। कॉन्शियस माइंड को समझ में आ गया पर उससे कुछ नहीं फायदा, ये तो डीप है पूरा, सबकॉन्शियस में हो रहा है सारा, उसको चाहिए, वो उसमें खुशी मिलती है। मुरली पढ़ना और रील्स और शॉर्ट्स देखना, ये दो है, ये बड़ा बोरिंग काम है, इसने ना चित्र है ना कोई जोक है, और जो है वो पहले से ही पता है, पता है पढ़ने से पहले कि कुछ खास मिलने वाला नहीं है इसमें, पर वो उधर जाते हैं तो उधर हंसी मिलती है, खुशी मिलती है, कुछ सेंसेशन टिटिलेशंस ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि इसमें नवीनता हमने कुछ की नहीं, इसलिए वो बोर्डम हो गया है। इसलिए इन सारे डिजिटल मीडियम जो भी है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये एडिक्शन क्रिएट कर देते हैं। इसलिए पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हम एडिक्ट हो गए। बीच में निमहांस बेंगलोर का इंडिया का सबसे बड़ा न्यूरो सेंटर है, रिहैब सेंटर, वहाँ पे एक लड़की एडमिट हुई थी, उसको बीमारी हो गई थी, चैटिंग की बीमारी, चैट करना, उसकी उंगलियाँ बस यही करती रहती थी दिन भर, उसके लिए भर्ती थी वो इसको छुड़ाने के लिए। उसकी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब एडमिट किया जाता है तो लाइन जो लेते हैं ना वो खींच लेते हैं, तो उनके हाथों को बांध दिया जाता है, छोटे बच्चे, एक महीने का बच्चा, वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वैसे हाथों को बांधते थे, क्योंकि हाथों को एडिक्शन हो गया है चैट करना, टाइप करना, मैसेज करना, ये चैटिंग भी एक बीमारी हो जाती। वो लोग बड़े एक्सपर्ट है टाइपिंग में, इतना फटाफट टाइप कर देते हैं, खट 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 खट, तुरंत मैसेज, लंबे लंबे मैसेज, दोनों उंगलियों से फटाफट काम करते, बिना देखे भी उनको पता है कौन सा कहाँ है, इतने एक्सपर्ट है। दूसरा क्या होता है, ब्रेन हाईजैक हो जाता है, आपकी जो चिंतन की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, आप चिंतन नहीं कर पाते। जैसे कोई मुरली है और उसका चिंतन करना है, ये नहीं होता है, उसके लिए कितनी एकाग्रता चाहिए, एकांत में बैठना होता है, एक लाइन पढ़ो, सोचो उसके विषय में, किसी टॉपिक पर चिंतन करना है, चिंतन करना और उस पर बोलना, ज़बरदस्त एनर्जी इसमें खर्च होती है। एक व्यक्ति मजदूर दिन भर काम करते रहता है, वो उतना नहीं थकता जितना एक विचारक थकता है, क्योंकि हर विचार, हर चिंतन, हर शब्द जो बोलता है उसमें एनर्जी जाती है, ब्रेन हाईजैक हो जाता है, कोई चुरा के लेके जा, किडनैप हो जाता है, और हम एक मशीन की तरह बन जाते हैं, ऑटोमेटिक। कमरे में गए, पहला काम मोबाइल और कुछ करते रहो, क्या करना है वो पता नहीं, बस देखते रहो, कुछ तो आते रहता है, देखते रहो देखते रहो, एक घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है कुछ खास नहीं देखा, फिर रख दिया, पर वो सारा अंदर चला गया है, इतना डीप चला जाता है वो सारा, और फिर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो फिर देखते हैं, और नहीं फिर देखते हैं तो फिर और स्टिमुलेट होता है, फिर और नींद नहीं आती, फिर देखते हैं, फिर और नींद नहीं आती, फिर और देखते हैं, अब इससे छूटे कैसे, वो एक चक्र चालू हो जाता है, ब्रेन कमजोर पड़ जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, हाईजैक हो जाता है, क्रिएटिव पावर कम हो जाती है। आप खुद से एकांत में बैठ के कोई कविता नहीं लिख सकते, कोई गीत नहीं लिख सकते, फिर खुद से कोई चिंतन नहीं लिख सकते, ना कर सकते, ना सोच सकते, क्योंकि सारा समय उसमें चला जाता है। पहले भी कभी सुनाया था, विदेश की एक बहन ने सुनाया था, ग्लोबल हॉस्पिटल में आए थे, उनका स्पीच था, कह रही थी विदेश में एक भाई है, भाई था, जो बहुत अनन्य था, सेंटर पर एकदम रेगुलर, और बहुत सी सेवाएं उसने की थी, अच्छी अच्छी सेवाएं, और बहुत सी नवीनता, क्रिएटिव पावर बहुत ज़्यादा थी उसकी। उसको वो बताता था, यहाँ गार्डन लगाना है, यहाँ ये करना है, ये चित्र को यहाँ रखना है, वो करना है, सब करता था, इतने ही उसमें बहुत ज़्यादा वो था, क्रिएटिविटी और आईटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज था उसके पास। कुछ दिनों से बहनों ने देखा कि उसको अब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, वो आते बैठता है पीछे थोड़ी देर और चला जाता है, पहले रुकता था सेंटर पर, सेवाएं करता था, अभी नहीं करता। उससे पूछा क्या है, बोले नथिंग, आई एम ओके। कई बार पूछा, वो कहते हैं आई एम ओके। आना भी कम हो गया, फिर कुछ कुछ दिन आता ही नहीं था बीते। फिर एक दिन उसको पूछा क्या हो रहा है, तुम बताओ, तुम्हारी हम मदद करेंगे। फिर एक बहन उसके साथ बैठी, काउंसलिंग सेशन हुए, तब उसने बताया कि मुझे एक आदत पड़ गई है YouTube की, सारी सेवाएं करके रात को 10 बजे वो YouTube चालू करता है, और करते करते देखते देखते 11 12 1 2 बज जाते, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद में नींद नहीं आती, फिर भी अमृत वेला तो उठता है क्योंकि बहुत लंबे समय की आदत है अमृत वेले की, इसलिए व्यक्ति उठेगा तो ज़रूर, इतने समय से तपस्वी है, चाहे 2 बजे सोता है फिर भी 4 बजे तो उठता है। पर उस अमृत वेले में क्या चलता है, जो देख रहा है वो कंटेंट, वो सारा विकार ही वही घूमते रहता है माइंड में, क्षमता कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, सोचना बंद हो जाता है, कुछ नया करूँ कुछ नया सोचूँ, ही इज ट्रैप्ड। उसने ये स्वीकार किया आखिर में कि ये हो गया है और मेरी मदद अगर आप लोग कर सके तो करो, इतना तो कहा उसने। और धीरे 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 कुछ मे भी 1 साल लगा उसको, निकला उससे बाहर, इतना जल्दी नहीं निकलते उससे। तो ब्रेन क्या हो जाता है, हाईजैक। तीसरा कंपैरिजन, ये क्या है, आप वो सब खोलते हो अकाउंट्स, इंस्टा एक्स ट्विटर ये सारे, आप देखते हो मैं यहाँ हूँ ठीक है, और मेरा जो दोस्त है वो स्विट्ज़रलैंड में हॉलीडे मना रहा है, उसने अपने सारे चित्र भेज दिए, फिर हम कंपेयर करते हैं, अरे हमने क्या किया और वो क्या कर रहा है, वो इतने कमा रहा है मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, वो वहाँ पहुँच गया हम यहीं पे है, कंपैरिजन चालू होता है, यहाँ तक कि बॉडी का कंपैरिजन चालू होता है, उसने अपनी इतनी बॉडी बना ली, हम ऐसे ही रह गए दुबले पतले, हमारी ऐसी बॉडी कब बनेगी, उसने इतने पैसे कमा लिए, वो करियर में इतना आगे चला गया, ये सब सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए युवा जेन जी ये सारी जो युवा वर्ग हैं ये डिप्रेशन में जा रहे हैं इस कंपैरिजन की वजह से। ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ये पॉइंट सारे साइंटिफिक डेटा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले पता नहीं रहता था, अभी अपने जो बचपन के दोस्त है वो फ्रेंड्स फेसबुक पे मिलते हैं, वो कहते हैं हमने यहाँ किया वो किया, हम सोचते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, वो कंपैरिजन चालू हो जाता है और युवक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी उसका एक प्रॉब्लम है। अगला है डोपामिन। हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसको कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, खुशी, ये सारा खेल इस डोपामिन का है। काम विकार उसमें तो इतना भर भर के निकलता है, वो रिलीज होता है सारे ग्लैंड से, डोपामिन ऑक्सीटोसिन एड्रेनालिन, इसलिए काम विकार में व्यक्ति को अतिन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। क्यों सारा संसार काम के पीछे पागल है, उसके कुछ कारण है। इस सृष्टि में काम सबसे गहरा फोर्स है, सेक्स इज द डीपेस्ट फोर्स वर्किंग इन ह्यूमन माइंड, उसमें ईगोलेसनेस की अवस्था आती है, बॉडीलेसनेस की अवस्था आती है, टाइमलेसनेस की अवस्था आती है, 3 चीज़ें होती है। व्यक्ति शरीर से पार निकल जाता है तो उसे एक झलक मिलती है अतीन्द्रिय सुख की झलक, समय से परे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है समय का, बॉडीलेसनेस ईगोलेसनेस की अवस्था में पहुंचता है, इसलिए उससे निकलने के बाद थकान की अनुभूति होती है, जैसे शरीर से कुछ ऊर्जा निकल गई। तो ये सब डोपामिन का कमाल है, वही बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू, इसमें क्या है, ड्रग्स में क्या होता है ऐसा, वो ड्रग्स लो तो लेने से क्या मिल रहा है, उससे कुछ भी नहीं, एडिक्शन उनका है ही नहीं। हमारा एक्चुअली जो डी एडिक्शन के लिए हम कर रहे हैं वो मार्ग ही अलग है, गलत, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। क्या व्यक्ति को पता नहीं ये खराब है, सबको पता है, जो पीता है 40 सिगरेट उसको भी पता है ये खराब है, प्रॉब्लम उसका है ही नहीं, प्रॉब्लम है डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन से, बीड़ी पीते ही वो केमिकल रिलीज होता है, पूरे तन बदन में खुशी की अनुभूति होती। व्यक्ति को एडिक्शन उस डोपामिन का है, ना ही बीड़ी का, ना सिगरेट का, ना दारू का, ना तंबाकू का, ना काम विकार का, ये सब उसके माध्यम है, और वही डोपामिन दूसरी चीज़ों से भी रिलीज होता है, मेडिटेशन से भी रिलीज होता है, पर मेडिटेशन करना सुबह अमृत वेला उठना पड़ता है उसके लिए, इतनी सारी धारणाएं चाहिए तब कहीं जाके ये जो है ये इंस्टेंट है, 2 मिनट्स नूडल्स तुरंत मिलता है, इसलिए सारा संसार उसके पीछे पागल है, सारा संसार। क्या उनको पता नहीं? उनको भी पता है। क्या डॉक्टरों को पता नहीं रहता है बीड़ी सिगरेट खराब है? उनको तो सबसे ज्यादा नॉलेज है, पर कितने सारे डॉक्टर्स ही तो एडिक्ट है, उनका तो पीने सिवा सर्जरी नहीं कर पाते, पीना होता है फिर जाके ऑपरेशन अच्छे से करते हो। क्या उनको पता नहीं ये खराब है? उनको तो सब पता है, पर ये एडिक्शन है। तो इस डोपामिन के गेम को समझना है। तो दो शब्द है जो लिख के रखेंगे, डोपामिन डंपिंग, डोपामिन लोडिंग। डोपामिन डंपिंग अर्थात एक साथ डोपामिन रिलीज होता है, कब? शॉर्ट्स देखो, रील्स देखो, कॉमेडी शो देखो, वल्गर सीन्स देखो, तुरंत डोपामिन रिलीज होता है, और एकदम डंपिंग होता है। इसलिए डेटा करता कहता है साइंटिफिक कि सुबह सुबह शॉर्ट्स और रील्स और ये सब कॉमेडी शोज नहीं देखना है, क्योंकि ये देख लिया तो वह डोपामिन एकदम ऊपर स्पाइक होता है और फिर नीचे गिर जाता है। ये धोखे वाला हार्मोन है, ये धोखा देता है, वादे का हार्मोन है, वादा करने वाला हार्मोन है, वादे बहुत करता है पर देता कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद सुबह ये देख लिया, उसके बाद में मुरली पढ़ो, फिर उसमें रस ही नहीं। कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, जॉब करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो स्पाइक्स होता ही नहीं। हिस्ट्री पढ़ो, उसमें कौन सा स्पाइक है? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अरे क्या करना है राजधानी का? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमको क्या करना है? उसमें वो स्पाइक कहाँ आ रहा है डोपामिन का? हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं, कंप्यूटर में इंटरेस्ट, किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है फिर ये। इसमें इसको कहते हैं डोपामिन लोडिंग। ये जो क्रिएटिव वर्क है उसमें एकदम नहीं स्पाइक होता है, वो धीरे धीरे। इसलिए कहा है सुबह सुबह मेडिटेशन करो, उसमें डोपामिन धीरे धीरे बिल्डअप होता है, लोड होता है। सुबह सुबह मुरली पढ़ो, अमृत वेला ही मुरली पढ़ लेना है, 7-5 बजे से पहले ही। तो डोपामिन लोडिंग होता है। अगर डोपामिन डंपिंग वाली जो क्रिया है वो थोड़ी शाम को करो, ऐसे साइंस कहता है, सुबह सुबह नहीं करना है। सुबह कर लिया तो फिर दिन में इंटरेस्ट नहीं होगा। सुबह सुबह ही चटपटा खा लिया, सुबह 6 बजे उठे पानी पूरी, क्या होगा? दिन भर भूख लगती रहेगी। सुबह ही एकदम गरिष्ठ भोजन कर लिया तो दिन भर क्या होता है? मुक्त हो जाते हैं ना, और ज़्यादा भूख लगती है। हंगर कम्स विथ ईटिंग। जब तक ना खाओ तब तक कोई भूख नहीं, एक बार खा लिया तो भूख चालू हो जाती है। हंगर कम्स विथ ईटिंग, इस सिद्धांत को समझना है। आपने सोचा कि अब मुझे कुछ नहीं खाना है, 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया, पानी पिया, आराम से निकल गया 12 बजे, फिर खा लिया एक बार तो फिर 2 बजे वापस भूख लगेगी, 4 बजे भूख लगेगी, 6 बजे भूख लगेगी, भूख का चालू हो जाएगा। नहीं खाया तो नहीं लगती है, जब तक संकल्प है। माता है पूरा दिन निर्जला कर लेती है, कैसे? संकल्प से। ब्राह्मणों को करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनको सुबह सुबह नाश्ते की आदत हो गई है, और वो भी गरिष्ठ। इसलिए सभी कुमारों के लिए एटलीस्ट नाश्ता वाला जो है उसको फल में कन्वर्ट कर दो, वो डोपामिन लोडिंग होगा। आप सुबह सुबह ही गरिष्ठ खा रहे हो, सारा पोहा भी खा रहे हैं, उसके साथ में अचार भी खा रहे हैं, उसके साथ में कोई सब्जी भी खा रहे हैं, उसके बाद में चाय भी पी रहे हैं, उसके साथ में ब्रेड भी डुबो डुबो के पी रहे हैं, उसमें खा रहे पी रहे जो भी है। ये इतना सारा, बस में इतने पैसेंजर घुस गए, अभी ये घुसे हुए पैसेंजर निकले भी नहीं है तो दूसरे पैसेंजर घुस रहे हैं, दोपहर को वो निकले नहीं तो शाम को और घुस रहे हैं। 3 बार भोजन, 4 बार टोली, मैं तपस्वी आत्मा हूं, ये कैसी तपस्या है? हमारे ओपीडी में एक साधु एक बार आया था, तो उसको हमने कहा था कि उसको कुछ हो तकलीफ थी शायद। वो बोले हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे भोजन का मत सुनाओ, मैं जानता हूँ ब्रह्मा कुमारियों को 3 बार खाते हैं, 4 बार तो टोली खाते हैं, कौन सी तपस्वी कर, कौन सी तुमसे बड़े तपस्वी हम हैं, ऐसे बोल के सुना के निकल गया था। हमारा पेट जो है ना प्लास्टिक की थैली जैसा है, उसमें अगर रोज बहुत भरो तो उसको उतना ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर कम भरेंगे तो उसको खालीपन लगेगा, पर धीरे धीरे उसको आदत डालो कम की तो वो कम में ही संतुष्ट होता है, पर उसको अगर 5 रोटियों की आदत डाल दी है और सारा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, खाने के बाद मीठा चाहिए, ये भी एक एडिक्शन जैसा ही है, कुछ तो चाहिए, कुछ नहीं मिले कम से कम गुड़ तो चाहिए। ये सब मन की रिवायरिंग है, यहाँ की मन का खेल। उस दिन भी कहा था 3 तल है, एक है अनशन करना, भूख हड़ताल करते हैं ना लोग, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हड़ताल करेंगे, उसको कहते हैं स्टारवेशन। उसमें स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस होता है, व्यक्ति आईसीयू में चला जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, किडनी फेल हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। दूसरा होता है फास्टिंग। फास्टिंग 2 कारणों से करते हैं, या तो रिलीजियस रीज़न है कि आज व्रत है इसलिए उपवास, उनको कम होता है कुछ तकलीफ, उनको कम होती है क्योंकि संकल्प जुड़ा है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। दूसरा व्यक्ति करता है वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, जो भी है डिटॉक्स के लिए करता है, या नेचर की ओर सेंटर पे 15 दिन जाते हैं, वहाँ पे जूसेस पीते हैं और वज़न घटा के आते हैं। एक बार बहुत पहले वो डॉक्टर साहब थे श्रीमन सर, उन्होंने एक पेशेंट एडमिट किया था जिसका वज़न 140 किलो था, फिर उसको एक मास रखा था, उसको 1100 कैलोरीज हर दिन दी थी, उसका 30-40 किलो वज़न कम हो गया था जब छुट्टी की, 6 महीने में आया सेम वज़न पहले जैसा। तो वो होता है फास्टिंग। तीसरा और एक होता है प्राणिक लिविंग, ये एक अलग ही आयाम है जिसमें आप प्रकृति से जुड़ते हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कहते हैं लिविंग ऑन लाइट, ब्रदारियनिज्म। अभी कॉन्फ्रेंस चालू है इसकी, इटली में कॉन्फ्रेंस चालू है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने ब्रदारियंस हैं, उसके 5 लेवल्स होते हैं। एक होता है 0 लेवल, जिसको व्यक्ति को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, व्यक्ति प्राण ऊर्जा से जी सकता है उसको पता ही नहीं, उसको कहते हैं 0 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक होता है लेवल 1, लेवल 1 में व्यक्ति को थोड़ा माइंड ब्रॉड होता है, इसका काम एक्चुअली फूड पर है ही नहीं, पूरा ऊर्जा पर काम करते हैं। लेवल 2 होता है, और आगे व्यक्ति बढ़ता है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 4 वाले बहुत कम लेते हैं पर एकदम हेल्दी रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, वो फूड फ्रीडम की ओर चले जाते हैं। हमको आश्चर्य लगता है, हमको लगेगा अरे हट योग है, ये है वो है, ये है अज्ञान, उन्हें पता ही नहीं इस लेवल का भी कोई एक इतना प्रकृति से जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं कि ये हवा, ये प्राण, ये ऊर्जा ही शरीर को सब कुछ दे देती है, सूर्य की किरणें, नंगे पांव चलना। वो 10 दिन की अभी कॉन्फ्रेंस चालू है, उसमें हमारा भी एक सेशन है 11 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे, 1:30 से 2:30, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के चुनिंदा लोग लिए गए हैं जो इस तरह का जीवन जीते हैं, तो उसमें कोई दमन नहीं है, उसमें कोई हठ योग की तो कोई बात ही नहीं है, वो एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसमें जो भी लोग हैं, वो 2-3 लोग हैं लेवल 4 वाले हैं, हेनरी मोफोर्ट है, ना खाना ना पीना, कितने साल हो गए, एकदम हेल्दी। इलिटो एमीन है उसमें एक, उसके साथ हम 9 दिन रहते उत्तराखंड में एक रिट्रीट में, उसको हमने देखा सबसे एक्टिव वही थे, वजन सेम, कोई भी वेट लॉस नहीं, न खाना न पीना, वो एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, फूड से फ्री हो गया है व्यक्ति जिसमें। साइंस वाले तो इसको सूडो साइंस कहते हैं, कहते मर जाएंगे, स्टार्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, शरीर को ये चाहिए वो चाहिए, ये भी राइट है, बट ये जो बातें हैं ये अलग प्रकार की बातें हैं। हिमालय पर योगी लोग रहते थे, क्या खाते थे? फल मिलते हैं वहाँ? कुछ भी नहीं था। कैसे? चमत्कार नहीं है, साइंस तो मानता ही नहीं इसको। ये एक अलग ही लेवल का कॉन्शियसनेस है, और ये लोग गुप्त रहते हैं, ना ही इनको साइंस के सामने आके कोई प्रूफ करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं हम क्यों करें, वो शरीर इतना अलाइन हो जाता है प्रकृति के साथ। और ये लोग संसार से, शहरों से बहुत दूर रहते हैं, शहर में रह के करना बड़ा मुश्किल है, ट्रैफिक जहाँ है वहाँ नहीं किया जा सकता है, इसके लिए चाहिए प्रकृति। उस प्रकृति में आप जाते हैं, वो प्राण ऊर्जा जसमहीन है, हमने किताब भी लाई है, हमारे अभी भी कमरे में है, फूड ऑफ गॉड्स करके किताब है, ये विदेश में भी चालू हुआ था, इधर भी चालू हुआ था, पर सब बहुत इसको कितना फॉलो करे, कितना अंडरस्टैंड करे, उसके लिए बहुत मेडिटेशन चाहिए, समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ ये करना होता है। तो हम बात क्या कर रहे थे, डोपामिन, ये सारा खेल डोपामिन का है। योग ही ऐसा करो कि शिव बाबा ही उस डोपामिन का सागर है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, सब कुछ। बाबा ने खुद ऐसे एक्सपेरिमेंट कराए, 15-15 दिन दादियों को क्या ढोड़ा और छाछ उसमें रखा था, कभी स्वयं प्रयोग करके देखने, बस ठूस रहे, खाए जा रहे। वो एक एडिक्शन है, उसका वजन बढ़ने और लेने से, कुछ कुछ कितने पतले लोग होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, 2-3 लड़के भाई है एकदम पतले, जो हमेशा ओपीडी में आते कहते वजन बढ़ाने का कुछ दो, वो खाते सबसे ज़्यादा है पर वजन ही नहीं बढ़ता, पता नहीं कहते कहाँ जाता है। और कुछ कुछ मोटे लोग हैं जो इत्तू से खाते हैं, इत्तू से, उनके साथ भोजन पे बैठना मतलब भूखे रहने जैसा है, इसलिए उनके साथ जाते ही नहीं है, इत्तू सा देते हैं, इत्तू सा, उससे क्या पेट भरता है, वो उतना ही खाते हैं पर वजन नहीं कम होता। तो ये कम होना, वजन का बढ़ना घटना, कहीं ना कहीं मन से भी रिलेटेड है। अगला है एनर्जी ड्रेन, एनर्जी को खींच लेता है ये, ब्लू लाइट निकलता है इस मोबाइल से निरंतर, स्क्रीन टाइम हर संडे आता है ना, देखना है कितना आता है हमारा स्क्रीन टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा स्क्रीन टाइम कितना है, कुछ देर उसको अलग ही रख दो और देखो आपका चिंतन बढ़ जाएगा अपने आप। काम है तो यूज़ करो, काम पूरा हुआ हो गया, अलग डिटैच हो जाओ, उस ड्रेन होती है एनर्जी। अगला क्या लिखा है, फॉरगेटफुलनेस, हम स्वयं को ही भूल जाते हैं, आत्मविस्मरण हो जाता है इसमें, पता ही नहीं चलता है हम कौन है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अगर कोई मूवी देख रहे हो मूवी में घुस जाता है व्यक्ति, कोई ट्रेलर देखता है उस ट्रेलर में घुस जाता है, संसार की न्यूज़, ये न्यूज़ भी बहुत एडिक्टिव है, इसने ये कहा उसके विपक्ष वाला क्या कहेगा, उसने ये कहा वो क्या कहेगा, ये घटना हुई उस पर उसके क्या मत है, उसके क्या मत है, उसके क्या मत है, ज़बरदस्त एडिक्शन है इसमें भी। ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज़, ये तीन गेम्स कोई खेलता है क्या? नहीं खेलते होंगे ना, खेलते हैं, धीरे धीरे बंद कर देना है उसको, ऑनलाइन गेम्स टाइम वेस्ट कर देता है वो। शॉपिंग भी एक एडिक्शन है, देखते ही रहते क्या खरीदना है, क्लिक करो, बस क्लिक ही तो करना पड़ता है, वो आ जाता है, लेकिन पहले जब दुकान में जाते थे और पैसे देते थे तो थोड़ी चोट लगती थी, पैसे गए हाथ से, अभी तो पैसे दिखते थोड़ी ना है, बस क्लिक करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खरीदते रहते कुछ ना कुछ, कुछ भी खरीदेंगे, जो चीज़ देख ली अच्छा ये नहीं है हमारे पास, क्लिक। तो ये सब भी एडिक्शन ही है, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज़, ये तीन चीज़ें हम खुद ही को भूल जाते हैं। और लास्ट है, क्या लिखा है, गॉड कनेक्शन, उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं। मनुष्य ने मशीन बनाई, किस लिए बनाई, ताकि समय बच जाए, और उस बचे हुए समय में मोबाइल का यूज करता है क्योंकि समय ज्यादा है। अफ्रीका के जंगलों में नेता लोग गए और उन्होंने कहा, आप सबके लिए खुशखबरी है, सुनो गांव वालों, अब आपके गांव से शहर, आपको गांव से शहर में जाने के लिए कितना टाइम लगता है। वो कहता है, 2 दिन जाने को लगते हैं, 1 दिन हम वहां पर काम करते हैं, अपने खरीद बेचते हैं चीज़ें, और 2 दिन आने को लगता है। वो कहता है, सुनो अब खुशखबरी, एक ट्रेन हम चालू कर रहे हैं गांव से शहर की ओर, आप कुछ ही घंटों में शहर जाओगे, काम करोगे और शाम को वापस आओगे। नेताजी अनाउंस करते हैं, सारे गांव वाले दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे इतनी अच्छी खबर, ट्रेन चालू हो रही है और तुम खुश नहीं हो। वो कहते हैं, फिर बाकी दिन हम करेंगे क्या। वो कहते, 5 दिन हमारे इसमें जाते, 2 दिन हम आराम करते, 2 दिन जाने को, 1 दिन बेचने को, 2 दिन आने को, और 1-2 दिन आराम। अब ये एक ही दिन में काम हो जाएगा तो हम करेंगे क्या। प्रश्न ये है, समय बहुत है हर एक के पास, तो समय किस में जा रहा है, इसमें। अगर इसमें कुछ करना ही है तो कुछ क्रिएटिव काम करना है। कुछ ऐसा काम करना है जिससे फायदा हो समाज को, इस संस्था को, इस यज्ञ को, लोगों को, समाज के वर्ग। कोई अशिक्षित है उसको हम सिखाए, कुछ तो करे अपने स्किल्स का, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। हमने खुद बहुत सारी मुरलियों का अध्ययन मोबाइल से ही किया है, इसलिए कौन सी मुरली कब चलती है इसमें हमारा 2013 से लेके अब तक का उसमें रिकॉर्ड है। दादी जानकी को किस दिन क्या हुआ और हमने क्या किया, वो उसमें नोट, ये सारे मैसेजेस है पूरे 10 साल के, उसको डिलीट नहीं किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये भी है, ये आज है कल चला जाएगा, चलेगा, पर जब तक है तब तक प्रयोग। सारी अव्यक्त मुरलियाँ इसमें हैं, ये जो ऐप है, सारी मुरलियाँ इसमें, कोई भी मुरली जब चाहो तब खोलो और तुरंत रिव्यू करो। सर्च ऑप्शन है, सर्च मुरली एक ऐप है, कोई भी शब्द उसमें डाल दो, बस वो कब कब आया शब्द उसमें आ जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है, पहले इतनी सारी किताबें थी, कहाँ रखे उसको, तो ये मुरली हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में भी अपना एक अपना बना दो मुरली चिंतन का। सुबह वो डॉक्टर साहब आए थे कल रात को, वो बता रहे थे कैसे उन्होंने नोट्स बनाए हैं। डॉक्टर अनुपम शरण सर्जन है ना यहाँ पर लखनऊ में, प्लास्टिक सर्जन, वो अपने नोट्स बता रहे थे मुझे मोबाइल पर कि मेरा एक नोट्स है, उसमें मैं अलग अलग रंगों में कलर, इसमें बाबा के जो महावाक्य, जैसे उन्होंने एक सेक्शंस बना के रखे हैं, जो जो पॉइंट आया वो उस सेक्शन में डालते जाते हैं। कितना अच्छा है, एक ये स्पीचिफाई है, कोई भी टेक्स्ट ले लो उसमें डाल दो, वो ऑडियो उसका सुनाता है, सुनो। बहुत सारी चीज़ें करना है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इसका उपयोग सेवा, ज्ञान और योग और धारणा के लिए करना है। तो ये कितनी बातें हो गई, 7 बातें। तो खुद ही डिसाइड करना, और अभी आपके हाथ में मोबाइल नहीं है कल तक, ठीक है, तो तो और ज़्यादा अच्छे से चिंतन किया जा सकता है। जब वो कल हाथ में आएगा तो उसका करना क्या है, पहले ये देखो उसमें से क्या क्या हटाना है। मन की आंखों से देखो कौन कौन से ऐप उसमें अलग डाल के रखे हैं जो फालतू है, उन सब को अनइंस्टॉल करो, एक काम। दूसरा काम, कितने सारे अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स उसमें भर के रखे उन सबको हटा दो, जो जो फालतू है उसमें सब हटाते जाओ, ज्ञान योग से रिलेटेड सब उसमें इंस्टॉल कर दो जो काम आएगा। तो ये काम करना है, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा गेम या एक्टिविटी करेंगे। धीरज भाई वो पट्टी है हमारे पास या ऐसे ही करें बिना पट्टी? और दूसरा, आप सबको ये दिया जाएगा, ये इसको कहते हैं टैली काउंटर। इसको अपनी उंगली में लगाना है, पहले ही इसको बांध देना है। ये हो गया, फिर इसको उंगली में डाल देना। इसमें बटन है एक, मैं आत्मा हूँ। कम से कम कल आपको ये करना है 1000 बार, 1000 times। क्या करना है? मैं आत्मा हूँ। कब करना है? चलते फिरते उठते बैठते, ये उंगली में लगा रहे मैं आत्मा हूँ, इसमें लिख के आएगा कितनी बार हुआ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये हमारा है आज का 816। ये क्लासेस चल रहे हैं ना तो उसके बीच नहीं कर सकते। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक छोटा है बटन, वो रिसेट के लिए। तो एक दिन में कम से कम 1000 होने चाहिए, तो वो आपको देंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मंत्र जैसा जपते रहना, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। कुछ काम नहीं है, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बैठे हैं गाड़ी में पीछे, चलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अभी हम एक गेम खेलेंगे।